जी प्लीज फरमाइए। जी जनाब अली।
सर मैं एक सवाल।
जी प्लीज आप बोले बोले बोले।
जो है ये श्रम्भुक में है कि तुम नजर करो तुम्हें कोई फतूर नजर नहीं आएगा। इस फातर समावाते वाले अर्थ का क्या मतलब होगा?
फातर कहते हैं बनाने वाले को, इसी से लफ्ज फितरत है। ये फितराना जो है ये इसका इजाफी शाखसाना है। असल चीज क्या है? बनावट। फातर समावात आसमान यानी शऊर को बनाने वाला। देखिए एक चीज शऊर है जिसको आप और मैं इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसको बनाने वाला कौन है? और ये जिस स्क्रीन पे हम डिस्प्ले हो रहे हैं, हम इसे स्क्रीन मानकर इस पे डिस्प्ले तो हो रहे हैं, लेकिन इसको बनाने वाला कौन है? वो जो मेकर ऑफ द हेवन एंड अर्थ कह लें, शऊर और स्क्रीन कह लें, ये जो फैशनर, फैशनर हमारे यहाँ फैशन का मतलब लेते हैं बनावट यानी मेकअप करना, किसी चीज को बनाकर बेहतर बनाना। तो फैशनिंग का मतलब होता है बनाना, तो फैशनर कह सकते हैं आप इसे। फातिर समावाते वलर्द यानी जो जमीन और आसमान का बनाने वाला है, यानी शऊर और उसके सारे दर्जात का बनाने वाला। ठीक हो गया जी? तो फितरत क्या हुई? फितरत से मुराद हुई बनावट, फितरत से मुराद हुई बनाने वाली एजेंसी। वो जो फातर जिस एजेंसी को इस्तेमाल करके चीजें बना रहा है उसका नाम हो गया फितरत। जी
तो ये श्रम्भुक में जो नजर करो तुम्हें कोई नजर नहीं आएगा।
जी फ्लॉ, फ्लॉ असल में अंग्रेजी का लफ्ज, अगर आप यहाँ पे फ्लॉ रखें ना, इसमें कोई कमी नजर नहीं आएगी, कोई कमजोरी, कोई रखना, कोई दर्द। वहां जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो जैसे किसी चीज में एक स्लिट रह जाए, कोई दराड़ रह जाए, कोई चीज में खामी रह जाए, उसकी तरफ इशारा है। यानी यू वोंट फाइंड अ फ्लॉ। फ्लॉ का मतलब है कोई कमी, कोई कमजोरी, कोई शॉर्टकमिंग, कोई चीज यू वोंट बी एबल टू फाइंड। यानी इसलिए कि बनाने वाले का जहन जो है, जब आप उसके जहन से चीजों को देखेंगे तो फिर आपको उसमें कोई गलती नजर नहीं आएगी, और अगर आप शैतानी तर्जों में देखेंगे तो आपको हर चीज में खामी दिखेगी। देखे ना, अब हम कहते हैं वो फलां बंदा गलत है, हम कौन होते हैं उसे गलत कहने वाले? लेकिन हमें वो बंदा जो है जिस तरह से उसने खुद को बनाया, क्योंकि अल्लाह ने इंसान को इख्तियार दिया हुआ है, हम उस पर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, उसको सजेस्ट कर सकते हैं। यही काम अंबिया कराम ने किया कि उन्होंने सजेस्ट किया कि इंसान जो है वो खुद को इम्प्रूव करे, अपनी थिंकिंग को इम्प्रूव करे। लेकिन जो नेचर है उसमें कोई फ्लॉ नहीं है, उसको यू कैन नॉट डेवेलप इट, यू कैन नॉट आल्टर इट, यू कैन नॉट डिवाइस इट इन एनी अदर मैनर। जी जनाब।
हेलो।
जी
जी तो ये भाई के मनफी और मुस्बत की बात हो गई ना। अगर हम मनफी सोच रहे हैं तो हमें सिर्फ खूबियां लोगों में दिखती है, मनफी पर से कुछ चल जाता है, और अगर हमारी मनफी सर्द फिट है तो हम लोगों की खूबियों को नजरअंदाज करके उनकी खामियों को बहुत बड़ा करके देखते हैं।
बिल्कुल, यही बिल्कुल सही फरमाया आप जी हाँ, ऐसा ही है। देखे ना, दो तर्जे हैं, एक रहमानी तर्जे हैं और एक शैतानी तर्जे हैं। एक को मनफी कहते हैं, एक को मुस्बत कहते हैं, एक को हम पॉजिटिव कहते हैं, एक को नेगेटिव कहते हैं। ठीक है ना, इसी को कुरान की इस्तलाह में रहमानी तर्ज कहा जाता है, यानी रहमान की तर्जें, और एक है शैतनी तर्जें। इनको आइडेंटिफाई कैसे करें, सवाल तो ये बनता है।
तो हम अल्लाह में ऐसे ये भी तो दुआ करते हैं ना कि अल्लाह पैगंबराना तर्ज फितरता फरमा।
भाई आप दुआ करते हैं, उसको अपनाने की तरफ आए ना। देखे, सिर्फ दुआ करने से तो काम नहीं चलता, करने के काम तो करने से ही होते हैं ना, दुआ करने से तो नहीं।
जी,
मैंने अर्ज किया कि आपका सवाल ये होना चाहिए कि जी ये हम मनफी और मुस्बत को, शैतानी और रहमानी तर्जों को, पॉजिटिव और नेगेटिव को कैसे आइडेंटिफाई करें, तो ये ज्यादा बेहतर।
जी बताइए, फिर उसके बाकी सवाल आपने बताया तो जहन में आया। हाँ, कैसे आइडेंटिफाई करें?
जी देखें, बड़ा सिंपल है। रहमानी तर्जों की तीन खासियतें जहन में बिठा लें, और तीन खासियतें शैतानी तर्जों की समझ लेंगे, जो कि एक दूसरे का अक्स हैं या एक दूसरे के बरअक्स हैं, यानी उसके खिलाफ हैं। मसलन रहमानियत क्या चीज़ है? रहमानियत कहते हैं, पहली बात ये कि उसमें तामीर है। उसमें क्या है? वो तामीर, यानी कि उसमें तखरीब नहीं है। यानी तखरीब होना शैतनत हुई, और तामीर होना किसी चीज को डेवलप करना हुआ ना, क्योंकि बनाता तो अल्लाह है, शैतान तो बिगाड़ता है। तो यहां से ये बात वाजे हो गई कि एक लफ्ज है तामीर, दूसरा लफ्ज है मोहब्बत। रहमान ने हर चीज को मोहब्बत के साथ तखलीक किया, तो दूसरा कंपोनेंट तामीर का हो गया मोहब्बत। अब इसका क्या मतलब हुआ कि शैतनत क्या हुई? मोहब्बत के बरक्स जज्बा जो है वो शैतनत कहलाएगा। अब एक चीज का बुरा लगना शैतनत कहलाएगा, लेकिन यहां पे एक बात की मजीद वजाहत जरूरी है कि हम गलत को गलत ना देखें क्या? अक्सर ये होता है, जब मैं ये बात समझाता हूं तो लोग एकदम कह देते हैं कि नहीं जी, आप ये कह रहे हैं कि गलत चीजों को भी हम बर्दाश्त करें। मैं कहता हूं नहीं, देखें, एक गलत को गलत देखना और उसकी इस्लाह करना ये हमारा फर्ज बनता है, बशर्ते कि हमें हालात और वाकयात और वो रुतबा इजाजत दे। जाहिर है कि अगर आप किसी बच्चे में गलती देखें तो आपका फर्ज बनता है कि आप उसकी इस्लाह के लिए उसको मुतनब्बे करें, लेकिन अगर वही काम आपकी अम्मा करे और आप अम्मा को गलत देख रहे हैं तो नहीं, यहाँ पे आपको जरा मोहतात होके बात करना होगी। बुरा देखना और गलत देखने में फर्क है। मैं कह रहा हूं बुरा मत देखें, गलती है तो उसकी इस्लाह फरमा दें, गलत को गलत समझें, उससे अवॉइड करें। लेकिन किसी मसलन देखे ना, अब आप मेहमान बैठे हैं, एक बच्चा है उस घर में, वो बच्चा आके मेहमानों के सामने अगर फर्ज करे वहां पेशाब कर दे या पॉटी कर दे तो क्या होगा? उसने गलत किया तो क्या माँ उसको इस गलती पे टोकेगी नहीं, इस्लाह नहीं करेगी, लेकिन उसको बुरा नहीं जानेगी, उससे नफरत नहीं करेगी। अब ये नफरत और बुग़्ज़ और हसद और कीना, ये सारे नेगेटिव जज्बात इस एक जुमले से यानी बुरा लगने से शुरू होते हैं। हजूर कलंदर बाब औलिया ने इसकी सबसे एक हल्की मिसाल जो दी है वो है काहली। ये सुस्ती और काहली भी कहा कि एक किस्म की शैतनत है, यानी आपको एक चीज अच्छी नहीं लग रही इसलिए आप उठ के जोर नहीं लगा रहे। तो पहली चीज हो गई तामीर, दूसरी चीज हो गई मोहब्बत, ये है रहमानी तर्जों की बात हो रही है। तीसरी चीज है इज्तमाइयत, यानी सबके लिए। आप गौर करें कि कुरान की तालीमात में से तालीम का एक जुज ये है कि जो चीज आप अपने लिए पसंद करें वही दूसरे के लिए पसंद करें। क्या मतलब हुआ कि आपके जहन में अब इज्तमाइयत का मतलब ये कि हम सबको खुश रखें? नो, इज्तमाइयत का मतलब ये हुआ कि आप इनफरादियत से बचें। इनफरादियत का मतलब मैं सिर्फ अपना सोचूं, अपना करूं, दूसरों का ख्याल ना रखूं। मैं जो कुछ कर रहा हूं मुझे उसके लिए दूसरों को देखना है कि कहीं मेरा किया दूसरे के लिए बुरा तो नहीं हो रहा। ये है इज्तमाई, गुजारा करना, इसे कहते हैं गुजारा करना। तो ये है रहमानी तर्जों में। आप ये तीन लफ्ज हिफ्ज कर लें, क्या? तामीर, मोहब्बत और इज्तमाइयत। अब इसके बरक्स होगा शैतनत, यानी के तामीर के बजाय जहां खराबी पैदा की जा रही है, जहां कहीं खराबी महसूस हो आपको, जब आप किसी चीज को खराब कर रहे हैं तो ये क्या हो गया? ये शैतानी तर्ज हो गई। आप किसी चीज को डेवलप कर रहे हैं, ये रहमानी तर्ज हो गई। अब अगर आप कहें कि जी मैं एक चीज को अपने तौर पे डेवलप कर रहा हूं लेकिन दूसरा बंदा उसको कह रहा है कि नहीं भाई आप तो मेरे काम में टांग अड़ा रहे हैं, तो वहां से तामीर खत्म हो गई। देखें ना, ये बात को समझने की बातें हैं। मैंने आपको रहमानी तर्जों का पूरी तरह वजाहत अर्ज कर दी, तीन लफ्जों में पूरी बात को कैद कर दिया। क्या? कि तामीर, मोहब्बत और इज्तमाइयत, ये है रहमानी तर्जे। अब इसके बरक्स तखरीब, नफरत और इनफरादियत, ये शैतानी तर्जे हैं। यानी ये जब हम कहते हैं बुरा लगना, पॉजिटिव नेगेटिव, ये हैं दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव। इनको समझ लेंगे तो इंशाल्लाह आपकी जान छूट जाएगी नेगेटिविटी से। जब भी आप कहीं नेगेटिव होंगे आपको ये एहसास हो जाएगा। आप इस तरह ये तोल लें ना कि भाई मेरी ये बात जो है ये तामीर के जेल में आती है, इसमें दूसरी मोहब्बत का उनसर है और इसमें दूसरों का भला है, बात खत्म। ये है इसका सारा। ठीक हो गया? जी, और कोई सवाल? जी जनाब।
मैंने ये सवाल पूछना था सर कि कुरान पाक में तीन किस्म के उलूम है। एक तो है कि मतलब जो पिछली कौमों के वाकयात बताए गए हैं, दूसरा शरीयत के बारे में बताया गया, और तीसरा है मुआद।
जी जी।
वो क्या गैप का इल्म है और वो कैसे समझा जाए, इसके बारे में जरा बता दें।
बहुत शुक्रिया, ये बहुत ही बड़ा सवाल है। ठीक है, यानी सवाल का हुजम बहुत बड़ा है, यानी इसके जवाब का हुजम। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि मुख्तसरन आपके जहन में एक नक्शा वाज़ेह हो जाए। देखिए, हम दुनिया में आए और यहां से हमने जाना है, ये बात आप सबके मेरे मुशाहदे में है। हमें खूब पता है कि हम कहीं से आए और कहीं जाना है। ये जो कहीं से आए और कहीं जाना है, इस कहीं को समझना माद कहलाते हैं। हम कहां से आए और कहां जाना है, इसको समझना माद कहलाता है। माद से मुराद यह है कि हमें अपने इस दुनिया में आने से पहले जिस जिस हालत से गुजर कर हम यहां आए, अल्लाह के जहन में हमने वजूद पाया, वहां से उतरकर हम नीचे और नीचे और नीचे करते करते लोहे महफूज तक आए, वहां से नीचे उतरते हुए आलम में मलाकूत और उससे होते हुए फिर आलम बरज़ख से होते हुए ज़मीन पे आए। तो इन सारी बातों का इल्म हासिल करना माद है। कुरान में ये जगह जगह मुख्तलिफ पैरायों में बयान किया गया। फिर हम जब यहाँ से जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, ये माद है। मरने के बाद हमारा जिस्म तो मट्टी में चला गया, ये हमारा और आपका सबका मुशाहिदा है। लेकिन हम यानी मैं, ये जो मेरी जात है, ये जो मेरा तशख्स है, ये जो मेरी शख्सियत है, ये कहाँ गई, क्या ये भी फना हो गई? तो जवाब कुरान ने बताया, नहीं, आप बतौर शख्स एक इनफरादी हैसियत में आपकी जात को फना नहीं है। क्यों फना नहीं है? क्योंकि हम अल्लाह की जात की तजल्ली का एक नुक्ता है। अब अल्लाह की जात की तजल्ली का एक नुक्ता, तो क्या अल्लाह की तजल्ली को फना है? तो आंसर इज़ नो। तो उसका एक नुक्ता जो है वो कैसे फना हो जाएगा? आंसर इज नो। यानी जब हमारी जात ने सरवाइव करना है, एग्जिस्ट करते रहना है, उसने मुख्तलिफ आलमीन का सफर तय किया, इस दुनिया में अपना इजहार किया, और यहां से जाने के बाद वो कैसे किन हालात में रहेगी, इस सारे चैप्टर का नाम है माद। अब जैसे मरने के बाद आलम एराफ है, मौत का आलम जो है उसमें हवास की रफ्तारों का तज़किरा है कि वो हवास की रफ्तारें इतनी बढ़ जाती हैं कि जात जो है वो रूह को कहती है जिस्म को उतार दो। आप अपना ये टाइट शू वाला लिबादा जो है उतार देते हैं, ठीक है, और आज़ाद हो जाते हैं, खुली फिजाओं में निकल जाते हैं, आलम एराफ में चले जाते हैं, वहाँ पहुँच के फिर हम किस तरह से ज़िंदा रहते हैं, वो इसी जहन के साथ हम ज़िंदा रहते हैं जो हमने यहाँ बनाया। अगर यहाँ बना हुआ जहन खुशी का आदि है, सुकून का आदि है, उसमें तामीर ही तामीर है, उसमें मोहब्बत ही मोहब्बत है, उसमें इज्तमाइयत ही इज्तमाइयत है, तो आप बताइए ऊपर का जहन, ऊपर जाने के बाद आप कैसे मजे में होंगे? फिर आलम इराफ से गुजर कर जब आप यौमुल कयामा, यानी जब आप कयामत के जोन से गुजरेंगे, अब यहाँ पे देखें ना, कयामत का हमारे यहाँ तबाही और बर्बादी का एक मंजर जो होता है हम उसको कयामत कहते हैं। नहीं, कुरान की इस्तलाह में कयामत वो बनावट है, यौमुल कयामा वो हमारी वो साख्त है जिसमें अल्लाह तबारक व ताला हमारी रूह के हवास कायम कर देंगे। देखे ना, यहाँ दुनिया में हमारे मादी जिस्म के हवास काम कर रहे हैं, ऊपर जाके नस्मा के हवास काम करेंगे, और फिर उससे ऊपर जाके रूह के हवास काम करना शुरू कर देंगे। जब रूह के हवास को कायम किया जाएगा तो कुरान ने उसको कहा है यौमुल कयामा। लफ्ज कयाम कर दिया, यानी किसी चीज को कायम कर दिया जाएगा। किसको कायम कर दिया जाएगा? तो ये हजूर मुर्शिद करीम और हजूर कलंदर बाब औलिया की तालीमात जो हैं, या उनकी किताब लौह कलम जो है, और फिर उसके बाद हजूर मुर्शिद करीम ने जो कुछ लिखा है, उसकी रोशनी में ये बात अखज की जा सकती है कि यौमुल कयामा यानी जब रूह के हवास कायम हो जाएंगे, फिर उसके बाद हमारा सफर हशर नशर तक जाएगा। उसके बाद फिर जन्नत दोजख है, फिर अबद है, फिर अब्दुल आबाद है। तो ये सारी कहानी का उन्वान जो है वो है माद। ठीक हो गया
जी सर? बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी तरह समझ आ गया। थैंक यू सो मच।
आपका शुक्रिया कि आपने इतना अच्छा सवाल पूछा। जी जनाब, और कोई सवाल? जी जनाब, अपना माइक ऑन करें और बोलें।
ये जो सूरह तकासुर में है कि अता जब तुम मकाबिर, उसके बाद है कि तुम जान लोगे, ये कहते हैं कि यहाँ जो अंधा है वो वहां भी अंधा है, तो ये कौन लोग हैं, किस तरह का इल्म होगा?
मतलब ये कि देखे ना, अगर आपने यहाँ अपनी सलाहियतों से काम नहीं लिया, अंधा होने का क्या मतलब है? बसारत जो है ये अल्लाह की बख्शी हुई एक सलाहियत है, ठीक है? बसारत का मतलब है देखने की सलाहियत का हामिल होना। तो अंधा क्या हुआ? जिसने अपनी सलाहियत का इस्तेमाल नहीं किया। अगर आपने दुनिया में रहते हुए अल्लाह के निजाम को समझने की कोशिश नहीं की, काविश नहीं की, तो आप तो क्या हुए? अकल के अंधे ही हुए ना। जो बंदा जिसने दुनिया में आके खुद को डेवलप नहीं किया या अल्लाह की बख्शी हुई सलाहियतों को इस्तेमाल नहीं किया, वो जाहिर है कि जो दुनिया में अंधा है वो ऊपर भी जाके अंधा ही रहेगा। ये बाकी रही कि हत्ता जरतुमुल मुकाबिर, यानी कि तुम तो माल की कसरत की मार पड़ी हुई है तुम्हें, तुम्हें कसरत ने मार दिया, या तुम गाफिल हो गए, यानी तुम्हारा ध्यान चीजों को जमा करने में लगा हुआ है, यहां तक कि तुम कब्र में जा पहुंचते हो, यानी तुम सारी जिंदगी अपने आप को डेवलप करने के बजाय माल जमा करने में लगे रहे। और करें अल्हा के मुत्तकासर कसरत में पड़े रहे। मसलन गौर करें, हम क्या कर रहे हैं? अगर हमने 100 रुपया कमा लिया तो हम कोशिश करते हैं कि नहीं ये 1000 हो जाए, जब 1000 हो गया तो हम कोशिश करते हैं ये 2000 हो जाए, 2000 होना शुरू हो जाए तो हम कहते हैं 5000 हो जाए। हमारी सारी तवज्जो दुनिया के माल को जमा करने और उसे बढ़ाने में लगी हुई है। तो ये बात अल्लाह ने इस एटीट्यूड को पसंद नहीं फरमाया, कहा कि भाई ये चीजें इस्तेमाल की हैं, इनको इस्तेमाल करो, इस्तेमाल करो और खुद को डेवलप करो। हमने क्या किया? हम सिर्फ चीजें जमा कर रहे हैं, अपनी सोच को अपनी फिक्र को डेवलप नहीं कर रहे। जी जनाब, जी फरमाइए।
ये फिर इन लोगों को इल्मुल यकीन, फिर अनुल यकीन, यानी इनको फिर इल्म हासिल होगा वहाँ, इस तरह किस तरह?
जी हाँ, मतलब है कि इल्मुल यकीन नहीं, जब वो जान लेंगे ना, देखें जब यहाँ पे जो
ये म्यूट हो रहा है कुछ
नहीं, आपकी आवाज आ रही है, अगर आप जी आपकी आवाज आ रही है, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, देखिए अब क्या बोल रहा था, बिल्कुल भूल गया, क्या कह रहा था? जी मतलब ये कि वो जान लेंगे ना, जब यहाँ पे देखे नहीं उन्होंने जाना, तो वहाँ ऊपर जाके तो उनको समझ आ जाएगी ना कि हम गलत चीज को जमा करते रहे। देखे ना, जब वो वहाँ जाके ये देखेंगे कि हमें जो जमा किया वो तो हम साथ ला नहीं सके, अब घर खरीदा, गाड़ियाँ खरीदी, बंगले खरीदे, और जनाब वहाँ पे मैंने विलास खरीदे और गाड़ियाँ और कारखाने बनाए, वो क्या साथ चले गए? तो ये जाके उनको जब ये इल्म होगा कि जो चीज मैंने डेवलप करनी थी वो खुद को डेवलप करना था, अपनी सोल को डेवलप करना था, अपनी सलाहियतों को बढ़ाना था, मैं माल जमा करने के चक्कर में पड़ा रहा, तो ये बात फिर उनको वहां जाके समझ आएगी। इसको अल्लाह ने इल्मुल यकीन कहा है कि अब यकीन आ गया, लेकिन अब उस वक्त तो कोई फायदा नहीं होगा, वो तो जो होना था वो आप कर चुके हैं। ठीक हो गया। जी जी वालेकुम अस्सलाम।
मेरे आज आपसे पूछ रहे हैं कि ये जो यक रंगी और बेरंगी, ये शुरू में तो अल्लाह ताला ने ठीक है हर नौ को उसके मुताबिक सेट कर दिया, अब आजकल जो हमारे ख्यालात वसवसे है उसके अलावा इनके क्या काम है, ये अल्लाह ताला की तरफ से जो सारे प्रोग्राम है जैसे बेरंगी यक रंगी, इनके आजकल ये लोग क्या, या इनसे हमें क्या क्या मिलता है?
अर्ज ये है कि ये एक मुस्तकिल निजाम है। क्या है ये? एक मुस्तकिल निजाम है और ये मुसलसल चल रहा है, यानी अल्लाह के जहन से जो प्रोग्राम नशर हो रहा है वो वराय बेरंगी से बेरंगी में ढल रहा है, फिर वो यक रंगी में ढल रहा है, वहां से वो रंगीनियों में ढल रहा है। ठीक है, आप और मैं उस सारे फ्लो में अपना अपना रोल अदा करके दुनिया में जाहिर हो रहे हैं, रंगों से खेल रहे हैं या रंग हमसे खेल रहे हैं, और उसके बाद हम अपना एक रिकॉर्ड मुरतब करके दुनिया से चले जा रहे हैं। वो तो हमेशा से जारी है और जारी रहेगा। गौर करें, एक मसलन आपके घर में बिजली आ रही है, मसलन आपके घर में बिजली आ रही है, आप किसी वक्त इस्त्री चलाती हैं, किसी वक्त टीवी चलाती हैं, किसी वक्त दोनों को चलाते हैं, लेकिन आप किसी वक्त वॉशिंग मशीन चलाती हैं तो जाहिर है कि इस्त्री को तो इस्तेमाल नहीं करती। अब आप कहें जी मेरा तो सारे काम हो गए, मैंने सारे स्विच बंद कर दिए, अब करंट की क्या जरूरत है? नहीं, करंट तो अपना फ्लो बहा जारी रखेगा, क्योंकि अगर आपने इस्तेमाल नहीं किया तो किसी दूसरे घर में तो जाएगा ना।
जाएगा, बिल्कुल ठीक है।
अब क्लियर हो गई बात?
जी क्लियर हो गई।
यानी ये एक मुस्तकिल निजाम है, जब तक अल्लाह इसे बरकरार रखेगा ये जारी रहेगा। अजल में ये शुरू हुआ है और ये अब तक जारी रहना है,
और हर नौ के लिए ये प्रोग्राम है,
हर नौ के लिए। जी हाँ, क्योंकि नौएं जब तक बरकरार हैं, देखे ना, जब तक हजरत आदम, पहले एक अकेला तने तनहा आदम था, ठीक है, आज माशाल्लाह 7.5 अरब की आबादी हो गई आदम की। तो ये आदम तो जब तक बरकरार रहेगा ये प्रोग्राम जारी रहेगा, यानी के ऊपर से वराय बेरंगी से बेरंगी बनती रहेगी, बेरंगी से यकरंगी बनती रहेगी, यकरंगी से रंग उभरते रहेंगे, बिखरते रहेंगे, एक दूसरे से मिलकर चीजें बनाते रहेंगे, डिसॉल्व होते रहेंगे, वापस यकरंगी में, वापस यकरंगी से बेरंगी में, बेरंगी से वापस वराय बेरंग में जाते रहेंगे। जी जनाब, नहीं आपकी आवाज आ रही है, आप फरमाए।
जी इंसान दुनिया से चला जाता है, इससे हमारी मतलब जाहिर है रूह जाती है, जिसम यहाँ का पिंजरा ये मिट्टी का यहीं रह जाता है। अब रूह आगे से कितने स्टेप्स में अमल करती है, पहले रूह आलम अरवाह में जाती है या आलम इराफ में जाती है, फिर उसके बाद क़यामत तक मतलब कितने हमने रास्ते अख्तियार करने, तो फिर आपने कैसे आपको मिलेगी
ये, असल में मैं आपको जी असल बात इतनी सी है कि ये टोटल 17 मुकामात हैं, हम 8 मुकामात से गुजर कर ये 9वें स्टेशन पे आए हुए हैं, ठीक हो क्या?
अच्छा, वो कौन से हैं?
सुने ना, मैं एक बात अर्ज कर रहा हूँ, आप मेरी अर्ज सुन लें। और वापस हमने यही 8 स्टेशन गुजर के वापस जहाँ से आए थे वहीं जाना है। अब उसकी तफसील जो है वो आते हुए उसका एक नाम है, जाते हुए दूसरा नाम है। मसलन आते हुए हम बरजख से होकर आए, अब ये जाते हुए इसका नाम आलम इराफ हो गया, ठीक है?
अच्छा,
अब आते हुए उसका नाम आलम अरवा था, जाते हुए उसका नाम आलम कयामत हो गया, गौर करें। तो वो असल में इस तरह ये जब आपके ये खुद आप सोचेंगे ना कि ये 8 क्या मुकामात हैं, हमारा वजूद पहले वजूद पाता है अल्लाह के जहन में, तो वो पहला मुकाम है।
अच्छा जी,
और फिर उसके बाद दर्जा बदर्जा हैं वो, जब आप पहले इनको तो समझ लें, यहाँ तो अभी तो जहन ही नहीं बन रहे। अब देखे ना, ये तो ऐसा ही है कि मैं आपको ऐसी कहानियां सुनाने बैठ जाऊं। देखे, हमारा फोकस है अपना माइंड को डेवलप करने पे, हमने अपनी सलाहियतों का जितना जूं जूं इस्तेमाल करेंगे, अगले मरातब रुतबे दर्जात वाजे होते चले जाएंगे। अब एक बंदे को पता ही नहीं है कि भी मैंने PhD कैसे करनी है, मैट्रिक वो कर नहीं रहा, मैं उसे PhD का सबक पढ़ाऊं कि ये रिसर्च होती है और ये यूं होता है, तो ये यूं होता है, तो ये सिनॉप्सिस लिखा जाता है, तो बिब्लियोग्राफी तैयार होती है, तो उसको क्या पता कि मैं क्या बोल रहा
हूँ।
तो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि पहले ये मैट्रिक करना है, तो उसके लिए आपको प्राइमरी करनी है, फिर उसके बाद मिडिल करनी है, फिर उसके बाद आपने मैट्रिकुलेट होना है। अभी तो हम देखे ना, पहले ही अब मैं कहूँ कि 16 जमातें पढ़नी है, आप कहें 16 जमातें क्या होती हैं, तो जाहिर है मेरा दिल टूट जाएगा। तो भी जब आपको ये भी नहीं पता, तो फिर आपको जो मैं बता रहा हूँ पहले आप उसको तो समझ लें। अब देखे ना, MA करने में आपके 18 साल लगते हैं, पहले 16 लगते थे, अब 18 साल लगते हैं। तो इसी तरह ये 17 मुकामात जो हैं, इनसे गुजर हम 8 से गुजर कर आए हैं, 9वें पे हैं, ये 9वां स्टेशन। इसी तरह हमने 8 मुकामात जो गुजर कर आए हैं, उन्हीं से वापस गुजर के जाना है।
अभी तो हमने अपने अमल अमल भी हमारे साथ, यहाँ तो हम अमल कर रहे हैं, तो वहाँ तो हमने अमल तुम्हारे साथ ही होंगे, हमें अमल करने
ये लव अमल को जरा एक सेकंड के लिए एक साइड पर लपेट के रखते हैं। मैं आपको बता देता हूँ असल कहानी 3 जुमलों में क्या है। कहानी ये है कि नुक्ता जात से एक नूर की रौ बहती है आपके जहन की तरफ, नस्मा की तरफ, और वहां से वो लहर जो है आपके बॉडी की तरफ आती है। नुक्ता जात से नूर की एक नूरानी लहर जो है वो आपके जहन की तरफ, और जहन से आपके दिमाग की तरफ या जिस्म की तरफ आती है। इस लहर में अलूम लुदनिया होते हैं, यानी जो अल्लाह की तरफ से अलूम अता होते हैं वो इस लहर में होते हैं, और फिर हमारे जिस्म से या हमारे दिमाग से एक जो कुछ हम करते हैं उस करने के नतीजे में एक लहर हमारे दिमाग से जहन की तरफ और फिर वहां से नुक्ता जात की तरफ जाती है। उसमें अलूमे दुनिया के, उसमें अलूमे दुनिया की रोशनियां होती हैं, ऊपर से आने वाली में अलूमे दुनिया होते हैं यानी अल्लाह की तरफ के अलूम होते हैं, और यहां से जाने वाली में दुनिया के अलूम होते हैं। अगर हमारा इन्हमाक बाहर है, दुनिया में है, तो क्या होगा कि हम दुनिया को छोड़ के दुनिया में खोए रहेंगे। इसीलिए मुराकबे और ये सारा तजवीज किया जाता है कि बंदे की तवज्जो उसके इनर में उतर जाए, वो अपने इनर में आने वाली अपनी जात की तरफ से आने वाली इत्तलात में इन्हमाक हासिल कर ले। जब वो इनमें इन्हमाक हासिल करता है तब वो जो कुछ करता है वो उसके आमाल कहलाते हैं और वो नूरानी आमाल हो जाते हैं। अगर वो अपनी मर्जियां करते हुए अलूमे दुनिया को नजरअंदाज करते हुए दुनियावी अलूम के तहत उनको जांचता तोलता परखता है तो वो आमाल उसके लिए कसीफ रोशनियां बनकर ऊपर जाते हैं, क्योंकि ऊपर जाके टैली करता है अल्लाह मियां के भी मैंने इसको ये कहा इसने किया क्या, मैंने इसको ये कहा इसने किया क्या। वो जो कहा गया और किया गया का तकाबल है वो हमें खुश करता है या नाराज करता है या खफा करता है या अजियत देता है। देखे ना, अल्लाह ने आपसे कहा कि आप सो जाओ, आपने कहा मैं नहीं सोता। अब आप जाग रहे हैं और मसलन फर्ज करें कि आप गेम खेल रहे हैं, अब ऊपर जाने वाली लहर में क्या होगा कि आप अल्लाह के हुक्म की वायलेशन करते हुए कोई काम कर रहे हैं तो वो रिकॉर्ड क्या बन रहा है, वो रिकॉर्ड बन रहा है नाफरमानी का, वो रिकॉर्ड बन रहा है। अब आपको अमाल समझ आ गया, मैं क्यों कह रहा हूं कि इस अमाल के लफ्ज अमाल ने साथ नहीं जाना, अमाल का अल्लाह के मुताबिक होना या ना होना इसने साथ जाना है। तो अलूमे दुनिया की तरफ मतवजो होने के लिए ये निजाम हजूर कलंदर बाब औलिया ने जो मुराकबे का दिया है ये इसलिए जरूरी है कि हमारी तवज्जो इनर सेल्फ में जाए और हम अपनी जात से आने वाली तलात से बहरामंद होना सीख लें और दुनिया की तरफ से तवज्जो कम होती चली जाए। दुनिया की तरफ से तवज्जो कम करने का ये मतलब नहीं है कि आप चीजों को काम ना करें, आप उनको पूरा ना करें, नहीं। ये देखें, आपको घर में सारे काम करने हैं, झाड़ू भी लगाना है, पोछा भी लगाना है, बर्तन भी धोने हैं, वरना तो घर जो है कबाड़खाना बन जाएगा। लेकिन अगर आप अपने घर को अच्छा रखेंगे तो ये क्या कर रहे हैं, अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप घर को अच्छा करके खुश हो रहे हैं, ये खुशी जो है ये जाएगी आपके साथ। हमें यहाँ पे चक्कर में पड़े हुए कि अमाल साथ जाएंगे, आपने काम को अच्छी तरह किया तो ये उस अच्छी तरह काम करने की खुशी ने साथ जाना है। ठीक हो गया जी? जी जनाब, और कोई सवाल? जी जनाब प्लीज।
लाचो में तैली लू जाता है और हमारे सरापे का मस्नूई परत अन्ना की गिरफ्त से आजाद होकर जरूरत के मुताबिक समझता और जहन में कर देता है। कि सरापा क्या है और इसका मस्नूई परत
क्या है? ये जो सरापा है ये आपका जहन है, ये जो आपका हमारा जहन है ना, ये है सरापा। सरापा यानी के पूरा वजूद, ठीक है। ये जो हमारा वजूद मेरे शऊर में है ये मेरा सरापा है, और ये सारे मस्नूई पर्त हैं जो हमने इसके ऊपर अपने चढ़ाए हुए हैं। ये सोचना कि जी मैं एक खातून हूँ या मैं एक मर्द हूँ, ये सरापा का मस्नूई पर्त है। हम असल में एक जात हैं, हमें जब ये शऊर हासिल होता है तो अना, इसी को अना कहा है, जात को, इसी को हजूर अलैहिस्सलाम ने अपना नफ्स कहा है, यही कहा है कि मन अराफा नफ्सहु फकद अराफा रब्बहु, जिसने खुद को जान लिया, खुद इसी का प्रचार किया इकबाल ने। इकबाल ने कहा कि खुद ही, यानी कि मैं खुद क्या हूं, इसी को हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मन अराफा नफ्सहु, जिसने खुद को जान लिया। ये खुद को जब आप जान लेते हैं तो जब आप उस जानकारी से अपनी जात को खुल के खेलने का मौका देते हैं तो वो सरापा के मस्नूई परतों से आजाद होके उसे पता है कि मुझे अल्लाह ने क्यों तख्लीक किया, फिर वो अपनी मर्जियां नहीं करता, अल्लाह की मर्जी पे चलता है।
पहचानेंगे
जाहिर है, बैठ के सोचेंगे तो पहचान लेंगे। अब आप अपने बच्चे को कैसे पहचानती हैं? हैं? भाई मैं आपके बच्चे को तो नहीं पहचानता ना, क्योंकि मैं उससे मिला ही नहीं कभी। आप खुद से मिलेंगे तो आप मुराकबा जो है ये असल में वो अमल है जिसमें बंदा खुद अपने साथ बैठना सीखता है। जब आप खुद अपने साथ नहीं बैठेंगे आप खुद को क्या जानेंगे? देखे ना, हमने मुराकबा किया और इस तरह किया कि हम अपने तसव्वुरात में खोए रहे, तो हमने खुद को थोड़ा जाना। जी
यहाँ पे जो देखे ना, आपको आलमी दीन लोग कहते हैं आप नमाज पढ़ लें, बस कुरान पढ़ लें, बस सब कुछ आपको सही। मतलब लोगों के जेन ही इस किस्म के बन गए हुए हैं, इसके के जो लोग आप जैसे बुजुर्गाने दीन बाबा जैसे बुजुर्गों की महफिल में बैठते हैं तो उनको पता चलता है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। बाकी आप देखें यहाँ पे लोग बड़े मुतमईन है कि मैंने 10 पारे पढ़ लिए, 10 कुरान पढ़ लिए, बस बहुत है, काफी है मेरे लिए, बस वो उसी में मुतमईन है।
चले तो वो खुश हैं तो खुशी रहें, उस पे हम क्या तबसरा करें।
मुझे कोई तो वो लोग समझ आए।
देखे ना, हमें फकीरी में और यही फर्क है कि फकीर किसी को नहीं देखता, वो सिर्फ खुद को देखने के चक्कर में पड़ा होता है। मुझे ये फुर्सत ही नहीं है कि कौन क्या कर रहा है। कभी आपने सुना मुझसे कि जी लोग ये करते हैं तो लोग वो करते हैं? कभी अब्बा से सुना कि लोग क्या करते हैं? वो तो ये कहते हैं भाई हमें क्या करना है, बस इस पे फोकस करें, बाकी जो भी कर रहा है अल्लाह ताला उनको हदायत दे, और क्या कहा जा सकता है। देखिए ना, हमने एक लॉजिकल बात अर्ज की कि भाई अल्लाह ने हमें क्यों तख्लीक किया, ये बात किसने समझनी है? अल्लाह को तो पता है। अब मुझे नहीं पता तो मुझे पता करनी चाहिए ना, तो मैंने ही पता करनी है और मैंने ही उस पर अमल करना है, उसका नतीजा भी मैंने ही भोगना है, अच्छा या बुरा, दोनों सूरतों में। देखे ना, मैंने अपनी कब्र में जाना है, मुझे किसी ने आके मेरा मदद तो करनी नहीं है सिवाय इसके कि मुझे नीचे उतारने में बस थोड़ी सी हाथ लगा दे, है मेरी जगह तो नहीं किसी ने सवाल जवाब, सवालों के जवाब देने, मुझे खुद ही देने, यानी जो कुछ मैंने किया उसके नताएज मुझे खुद ही भुगतने, तो मैं अपने किए को क्यों ना ठीक कर लूं।
बिल्कुल ठीक है
जी जनाबे अली। और कोई सवाल?
एक और सवाल था कि आपने इस वक्त बताया था कि जन्नत माँ के कदमों के नीचे नहीं एक दामाद के ऊपर है, कि वो क्या एक दामाद कर रही है मिलाद के लिए।
जी जी।
तो सर तो जो आज हमारे माशरे में आप देखे कि माँ की जब तरबियत बच्चों की तरबियत का टाइम होता है उसको किचन में घुसा दिया जाता है, वो किचन से ही फारिग नहीं होती, उसके बावजूद जो उसको टाइम मिलता है बच्चे की तरबियत करती है, लेकिन माशरा खानदान और जेनेटिकली भी उसपे जो असरात होते हैं उसपे माँ की पकड़ तो नहीं है?
बात यह है, एक बात हजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमा दी, ठीक है, उन्होंने कहा कि माओं को इतना बाशऊर होना चाहिए, ठीक है,
सही बात,
कि वो अपनी औलाद की ऐसी तरबियत करें कि उनके बच्चे जन्नती बन जाएं। अब ये बात उन्होंने कह दी, अब मुआशरे ने उसका क्या हशर किया, वो आपके सामने है, जन्नत को माँ के पैरों तले रख के बैठ गए हम, तो ठीक है, अब बताएं ना इसके अंजाम जो है वो इसके नताएज कौन भुगतेगा? हजूर अलैहिस्सलाम ने आपके भले के लिए, मेरे भले के लिए, मुआशरे के भलाई के लिए एक बात फरमा दी, अल्लाह ने आपको इख्तियार दिया हुआ है, आप चाहे खुद को बाशऊर बनाने के इकदामात करें ना करें। अब देखें ना, जब आपके इलम में ये हदीस आ गई, उसका सही मतलब आ गया, तो फिर आपके पास क्या चॉइस रह गई? यू हैव टू डेवलप योर कॉन्शियसनेस, यू हैव टू डेवलप योर माइंड, योर पर्सनैलिटी, क्योंकि बच्चों ने आपको फॉलो करना है, हाँ या नहीं?
ठीक है, बिल्कुल सही।
अब अगर कोई नहीं कर रहा तो मैं, देखे ना, हमें कोई डंडा बरदार तो बनाया नहीं गया कि हम जबरदस्ती करें। अब अगर माँ बाशऊर होगी तो किचन के काम को वो अपने ड्यूरेशन में, अपने टाइम में निपटा लेगी, और साथ में नजर रखेगी कि बच्चा क्या बोला, और करे। अब मैं देखता हूं कि भाई जितने भी ये बड़े लोग हैं उनकी वालदाओं ने क्या किया, वो क्या घर के काम नहीं करती थी? जरूर करती होंगी, लेकिन साथ में उन्होंने बच्चे की ऐसी तरबियत फरमाई कि वो बच्चा उस बात पे कारबंद हो गया, जो चीज उन्होंने सिखाई उस पे वो कारबंद हो गया। मसलन अब हजरत अवैस करनी की वालदा ने उनको ये बताया कि बेटे अपने फराइज में नमाक रखो, जो काम करो इंतहाई खलूस से करो।
उस वक्त की माएं अगर नहीं पढ़ी हुई थी मगर उनको शौर बहुत था, उनको उनका लाशौर भी स्ट्रॉन्ग था। आजकल की पढ़ी लिखी हुई माएं जो है वो भी,
देखें शौर तो सभी के स्ट्रॉन्ग हैं, वो बनावट का फर्क है, लाशौर सबका एक जैसा है। आप अपने लाशऊर से रहनुमाई कितनी लेना चाहते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। यही बात कही हजूर अलैहिस्सलाम ने कि माओ को बाशऊर होने, माओ को वो इकदामात तजवीज करने, इकदामात अल जन्ना तो तहते इकदामे उम्हातुकुम, तुम्हारी माओं के इकदामात के तहत की वजह से तुम्हें जन्नत मिलेगी। लेकिन हमने आज तक कभी इस हदीस को उस तरह सुना ही नहीं, कसूर किसका हुआ? हमारी जहालत का। तो जहालत को दूर किसने करना है जी? अल्लाह करेगा। तो फिर अल्लाह ने जब करेंगे तो कर देंगे। वरना तो भाई असल में ये जो काम मेरे करने का वो अल्लाह ने मुझ पे ही छोड़ा हुआ है। अगर आप पे जो काम छोड़ा गया है वो आपको करना है ना, जो काम अल्लाह के करने का वो तो अल्लाह कर ही रहा है, लेकिन जो काम मेरे और आपके करने का वो अल्लाह मियां आके क्यों करेंगे? अगर वही काम भी अल्लाह नहीं करना तो फिर आपके लिए जन्नत और जहन्नम क्यों बनी? बात समझ में आ रही है? देखे ना, कुछ काम जो हैं वो अल्लाह के करने के, अल्लाह रब्बे करीम अपने कामों को पूरी तरह सर अंजाम दे रहे हैं, हमें उसमें कोई कमी या खिला नजर नहीं आता, कोई फ्लॉ नजर नहीं आता। लेकिन जो हमारे करने के काम हैं, हमारा उसमें कितना इन्हमाक है। अब ये देखे ना, अल्लाह ने करम किया कि आपने ये सवाल जवाब की एक नशिस्त का एहतमाम कर लिया, तो अब बातें आपके पल्ले पड़ रही हैं, तो आपका शऊर आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होगा ना, खुलेगा। जी ठीक हो गया जी, मेरा ख्याल है काफी है इतना। चले खुश रहिए, अल्लाह आपको सबको बहुत खुश रखे। थैंक यू वेरी मच।
अल्लाह हाफिज़ सर।
अल्लाह हाफिज़ सर।
अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।